का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी अनिकेत का दूसरा भाग। अब तक आपने सुना प्रथम मिलन की खुमारी अभी उतरी नहीं थी। वीरेश ने अलस भाव से फिर एक बार मृणाल को अंक में भर लेना चाहा, पर उसका हाथ खाली बिस्तर टटोलता रह गया। नई नवेली पत्नी ने उसे सख्ती से बरस दिया। जब ठीक से तैयार हो चुकी तो पायल पहनते हुए मृणाल ने पूछा, सुनो वो जो आयाबाई है ना। कौन आयाबाई? वही कल दीदी ने जिनके पैर पड़वाए थे। कहा था ये हमारी माँ समान है, वीरू को इन्होंने ही पाला है। वे आयाबाई नहीं है, उन्हें हम जिया कहते हैं। हाँ वो जो भी हो, मैं यह पूछ रही थी क्या उनके भी रोज पैर छूने होंगे। देखो अव्वल तो इस समय जिया अपने घर में होंगी, और अगर हो भी तो पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रणाम श्रद्धा की अभिव्यक्ति है, जिनके प्रति श्रद्धा ना हो उन्हें प्रणाम करना बेमानी है। विशाखा दीदी हफ्ते भर साथ थी तो बड़ा सहारा था। वीरू ने दीदी से ही कहा कि एक बार फुर्सत से बैठकर मृणाल को जिया के बारे में सब बता दे। माँ की मृत्यु के समय विशाखा 5 वर्ष की और वीरेश मात्र 2 महीने का था। 70 साल की दादी तो इस आघात से एकदम बौखला गई थी। बेटा दूसरी शादी के लिए अभी तैयार नहीं था। फिर दादी ने मुंशी जी की 17 वर्षीय बाल विधवा बहन को बुलवाया और बच्चा उसकी गोद में डाल दिया। कह दिया कि आज से यह बच्चा तुम्हारा हुआ, इसे पाल पोस कर बड़ा करो और मुझे चैन से राम का नाम लेने दो। वीरू 10 साल का था जब दादी ने संसार से विदा ली। दादी की मृत्यु उसके नन्हे से मन को झकझोर गई। अगर जिया पास ना होती तो वह टूट ही जाता। विशाखा आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल चली गई और जिया की पढ़ाई में विराम लग गया। यथावकाश वीरेश ने भी हाईस्कूल पास किया, वह भी हॉस्टल चला गया। पर छुट्टियों में घर आने की ललक दोनों बच्चों में बनी रही, और इसका एक कारण जिया का अकृत्रिम स्नेह भी था। दीदी की शादी की तो पूरी तैयारी जिया ने की थी, यही हाल वीरू की शादी में भी रहा। नेपथ्य में रहकर जिया ने व्यवस्था की पूरी बागडोर संभाली थी। विशाखा भावुक होकर पूरी गाथा सुनाती रही और मृणाल तटस्थ भाव से सुनती रही। उसके चेहरे पर एक ऊब एक खींच थी जो विशाखा की नजरों से छुप ना सकी। विशाखा दीदी को यहां से सीधे अमेरिका उड़ना था, इसीलिए वीरेश ने अपनी हनीमून ट्रिप स्थगित कर रखी थी। विदाई वाले दिन पहली बार जिया ने उन लोगों के कमरे के बाहर खड़े होकर हौले से आवाज दी, बहुरानी। मृणाल का चेहरा एकदम तन गया था, फिर भी वह चुपचाप बाहर आकर खड़ी हो गई। सुनो बेटे, जरा अपने सुहाग भरे हाथों से अपनी दीदी का रोली टीका तो कर दो। खील बताशों से नारियल सुपारी से उसकी गोद भी भर देना। खील बताशे आंचल में समेटकर दीदी ने पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, फिर पापा के पैर छुए। इसके बाद जिया के गले लग गई, दोनों खूब रोई। जाते समय विशाखा बार बार जता गई थी, पापा अब जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवाइए, आपको मेरे यहाँ आना है और पूरे 6 महीने तक रहना है। अगले 4 साल तक ना विशाखा ही आ पाई, ना पापा का जाना ही हो सका। पापा जाने का मन नहीं बना पाए, क्योंकि बहू का पांव भारी था। भोपाल उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा था, पर कुणाल के लिए उनके बार बार चक्कर लगते रहे। वीरेश उनके पासपोर्ट की व्यवस्था कर ही रहा था कि एक दिन अचानक उन्होंने दूसरा ही टिकट कटा लिया। पापा के अंतिम क्षणों की छटपटाहट वीरू को आज भी याद है। वह यही चाह रहा था कि जो कुछ होना है शांति से हो जाए। पापा की बेचैनी देखी नहीं जा रही थी। वह उनकी पलंग पर बैठ गया, अपने दोनों हाथों में उनका हाथ लेकर सहलाते हुए उसने कहा, पापा आप दीदी के लिए व्याकुल हो रहे हैं ना? मैंने फोन कर दिया है, बस आज कल में वह पहुंचती ही होंगी। आप इत्मीनान रखिए, मेरा घर दीदी के लिए हमेशा खुला रहेगा। जमीन जायदाद को लेकर भी हम दोनों के बीच कोई विवाद नहीं होगा। वह जो चाहेंगी, जितना चाहेंगी, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। अचानक वीरू के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने पापा के कान के पास झुककर फुसफुसा कर कहा, पापा आप जिया की चिंता मत कीजिए, मैं आजीवन उनकी देखभाल करता रहूंगा, वचन देता हूं। मन से वह असत्य का बोझ हटते ही पापा चिर निद्रा में चले गए। बाकी सारे संस्कार तो खैर गांव में ही होने थे, अब भोपाल वापस लौटना था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ का तामझाम कैसे समेटे, क्या व्यवस्था करे। उसे सबसे ज्यादा चिंता थी जिया की। बार बार पापा को दिया हुआ वचन याद आ रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मृणाल जिया को साथ ले चले? जिया को क्यों? यहां रहकर भी क्या करेंगी? वहां रहेंगी तो कुणाल से उनका जी बहला रहेगा। तुम भी निश्चिंत होकर क्लब में या किसी पार्टीज में जा सकोगी। सो तो ठीक है, पर रखेंगे कहां? ओल्ड होम में रखवा दो ना। ओल्ड होम मतलब वृद्धाश्रम? क्यों, क्या हर्ज है? सुना है वहां गरीब बेसहारा बुजुर्गों की अच्छी देखभाल होती है। वीरेश ने कहना चाहा कि जिया ना तो गरीब है और ना बेसहारा, पर उसने चुप रहना ही श्रेष्ठतर समझा। हर बार की तरह मुंशी जी गांव से आए थे। जाते समय वीरेश ने पूरे अमले का खर्च उन्हें सौंप दिया था। मृणाल हमेशा की तरह यह देखकर कसमसा रही थी, पर इस बार उससे रहा नहीं गया। मुंशी जी के जाते ही उसने कहा, सुनो हम कोई राजा महाराजा नहीं है जो बिना बात के इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट पालते रहें। इतना बड़ा मकान क्या लावारिस छोड़ा जा सकता है? इसीलिए तो कहती हूं कि कोई परमानेंट व्यवस्था करो ना, ताकि यह हर महीने का झंझट ही समाप्त हो जाए। क्या व्यवस्था करूं? जानवर बेच सकता हूं, गाड़ी ठिकाने लगा सकता हूं, पर मकान का क्या करूं? उस छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी हवेली के लिए किराएदार कहां से लाऊं? तो बेच दो। हवेली का सौदा अंततः हो ही गया और ठीक ठाक ही हुआ। दीदी ने सभी कामों के लिए अपनी अग्रिम स्वीकृति बिना शर्त दे दी थी, इसलिए किसी झगड़े झंझट की संभावना ही नहीं थी। अब बस एक ही समस्या रह गई थी जो सबसे कठिन थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उनका क्या करें। महज 2 लाख रुपए देकर वह उनसे मुक्त नहीं हो सकता था, होना भी नहीं चाहता था। मृणाल के सामने वह इस प्रश्न को उठाना नहीं चाहता था। जब वह अपने मतलब का सारा सामान लेकर भोपाल लौट गई, तो उसके बाद ही उसने इत्मीनान से बात करने की ठानी। अब आगे। उस दिन रात के खाने के बाद वीरू ने जिया को अपने कमरे में बुला लिया। उसकी छोटी सी पढ़ने वाली मेज आज भी कमरे में थी। अपने सामने वाली कुर्सी पर जिया को बिठाकर उसने पूछा, जिया क्या तुम यहीं रहना चाहोगी? अगर चाहती हो तो बोलो, मैं जयपुर वालों से बात करके तुम्हारा वाला घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। यहां इस उजाड़ में अजनबियों के बीच मैं क्या करूंगी? तो क्या विवेक या विकास के पास जाना चाहोगी? अपने माँ बाप के मरने के बाद उन लोगों ने कभी मेरी खोज खबर ली है? कभी एक पोस्टकार्ड तक नहीं डाला है? अब एकाएक उनके दरवाजे पर जाना ना उन्हें अच्छा लगेगा ना मुझे। तो दीदी से बात करूं? विशु से? ना बाबा, अगर हारी बीमारी में उसे मेरी जरूरत पड़ेगी तो जरूर जाऊंगी, पर हमेशा के लिए उसके घर में पड़ी रहूंगी यह संभव नहीं है। ये सारे उत्तर वीरेश को अपेक्षित ही थे, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वह तो बस अपनी बात कहने के लिए एक भूमिका बना रहा था। अब उसने अपनी बात प्रारंभ की, जिया मैं बस तुम्हारा मन जानना चाहता था। वैसे मैंने तुम्हारी व्यवस्था एक बहुत अच्छे हॉस्टल में कर दी है। अब इस उम्र में हॉस्टल रहूंगी मैं? वह हॉस्टल उम्र दराज लोगों का ही है, तो सीधे सीधे वृद्धाश्रम कहो ना। नहीं, वह वृद्धाश्रम नहीं है, हॉस्टल है, बल्कि यूं कहो कि 3-स्टार होटल है। वहां सब संपन्न घरों के लोग रहते हैं। किसी के बच्चे विदेश में हैं, किसी के बच्चे हैं ही नहीं। बड़े बड़े बंगले में अकेले रहना आजकल खतरनाक हो गया है, इसलिए यहां आ गए हैं। कुछ लोग जोड़े से हैं, कुछ का जोड़ा बिछड़ गया है, अकेलापन काटने के लिए यहां आ गए हैं। कुछ लोग इसलिए आ गए हैं कि बेटे बहू उन्हें रखना नहीं चाहते। वीरेश रुक कर जिया की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता रहा। जब वे कुछ नहीं बोली तो उसने आगे कहा, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख आया हूं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया हवादार कमरा है, अटैच्ड टॉयलेट्स हैं, हर कमरे में एसी, टीवी, टेलीफोन और छोटा सा फ्रिज है। इंटरकॉम पर फोन करके कमरे में चाय नाश्ता मंगा सकती हो। खाना सबके साथ हॉल में ना खाना हो तो कमरे में मंगवा सकती हो। घूमना चाहो तो छोटा सा बगीचा है, लॉन है, रोज एक डॉक्टर राउंड पर आता है। दिन में और रात में अलग अलग सिस्टर्स ड्यूटी पर रहती हैं। 2400 घंटे एक एम्बुलेंस कंपाउंड में खड़ी रहती है ताकि इमरजेंसी में परेशानी ना हो। इतना सब कुछ है तो खर्च भी बहुत आता होगा। खर्च की चिंता तुम क्यों करती हो? वह मेरा जिम्मा है। इसके अलावा मैं बैंक में तुम्हारा खाता भी खोल दूंगा। पास ही स्टेट बैंक की शाखा है, जब चाहो जितना चाहो निकाल लिया करना। मुझे बस यह बताओ, क्या वहां रह लोगी?
क्यों नहीं, जब इतने लोग रहते हैं तो मैं भी रह लूंगी। मगर
अब अगर मगर छोड़ो और जल्दी से यह फॉर्म भर दो। मैं खुद ही भर देता, पर इसमें दुनिया भर की बातें पूछी हैं, तुम्हारी जन्मतिथि, ब्लड ग्रुप, एलर्जी अगर कोई हो तो, कोई क्रोनिक बीमारी, चश्मे का नंबर और भी जाने क्या क्या, यह सब भरना पड़ेगा। और क्या, जब वे लोग पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो पूरी केस हिस्ट्री तो रिकॉर्ड में होनी ही चाहिए ना। जिया ने फॉर्म हाथ में लिया और पढ़ने लगी। उनका नाम सुमित्रा देवी ठीक ही लिखा था, पर पति के नाम का कॉलम पढ़ते ही वे चौंक पड़ी। ये किसका नाम लिख दिया है वीरू तूने? पता नहीं था तो मुझसे पूछ तो सकता था। जिया, जिस आदमी की शक्ल तक तुम्हें याद नहीं है उसका नाम मुझे कैसे पता होगा?
तो इसका मतलब तू जो मर्जी आए वही लिख देगा।
मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है जिया, वीरू ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। क्या तुम उनकी पत्नी नहीं थी?
जिया का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। उन्होंने दोनों हथेलियों में अपना मुंह छिपा लिया। उनका वश चलता तो वह उठकर ही चल देती, पर जैसे किसी ने उनकी सारी शक्ति ही निचोड़ दी थी।
जिया, वीरेश ने अत्यंत स्नेहिल स्वर में आवाज दी, तुम मुझे हमेशा बच्चा ही समझती रही, पर तुम शायद यह नहीं जानती कि जिन बच्चों के मां नहीं होती वे समय से पहले और जरूरत से ज्यादा समझदार हो जाते हैं। यह मत समझना कि मैं तुम्हें कटघरे में खड़ा कर रहा हूं या कि तुमसे नफरत करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, वक्त का या उम्र का तकाजा रहा होगा, उसके लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता, ना ही मैं तुमसे नाराज हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नाराज तो मैं अपने पिताश्री से हूं, वे चाहते तो इस रिश्ते को एक नाम, एक प्रतिष्ठा दे सकते थे, पर शायद उनमें वह साहस नहीं था, इसीलिए मैं उनकी गलती सुधारने जा रहा हूं।
वीरू, जिया ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज से लग रहा था जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही है। यह सच है बेटा कि तुम्हारे पिता में वह साहस नहीं था, पर वह कायरता नहीं थी, मजबूरी थी।
कैसी मजबूरी? वीरेश के स्वर में आक्रोश था।
वह जमाना और था बेटे, और गांव घर के दस्तूर भी अलग होते हैं, उन्हें मानना पड़ता है। उनका एक परिवार था जिसकी परंपराएं थी, समाज था जिसके नीति नियम थे, व्यवसाय था जिसकी पद प्रतिष्ठा थी। एक अकेला आदमी इतने सारे मोर्चे पर कैसे लड़ता बेटा?
सब कहने की बातें हैं, अगर इंसान मन में ठान ले तो सब कुछ कर सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए।
अच्छा, उनकी बात जाने दो, वे जैसे भी थे अब अपने बीच नहीं हैं। तुम अपनी कहो।
अपनी क्या?
तुम तो नए जमाने के हो, शहर में रहते हो, किसी नियम कानून को मानते नहीं, फिर तुम इतने मजबूर कैसे हो गए?
मैं समझा नहीं।
तुमने अपने बचपन में मुझे एक सपना दिखाया था कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे, तुम्हारा एक बड़ा सा बंगला होगा, बंगले में मेरा भी एक कमरा होगा, कमरे से लगी बालकनी में एक झूला पड़ा होगा, उस झूले पर बैठकर मैं तुम्हारे बच्चों को कहानियां सुनाऊंगी, उनके लिए स्वेटर बुनूंगी। अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, तुम्हारे पास बड़ा सा बंगला भी है, घर में बाल गोपाल भी हैं, पर मेरा सपना तो अधूरा ही रह गया ना। अभी तुमने मेरे लिए इतने ठिकाने गिनाए, पर एक बार भी नहीं पूछा कि क्या जिया मेरे घर रह सकोगी। जैसी भी रही हो, पर यह तुम्हारी मजबूरी ही थी ना। अब मुंह छिपाने की बारी वीरेश की थी। उसने तो मेज पर ही सिर रख दिया और उसे कोहनियों से ढक लिया। उसे लगा कि वह अब कभी भी जिया को अपना चेहरा नहीं दिखा सकेगा। बहुत देर बाद उसे अपने सिर पर वही चिर परिचित आश्वस्त करने वाला स्पर्श महसूस हुआ। उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए जिया ने कहा, वीरू बेटे, मैंने वैसे ही एक बात कह दी थी, उसे दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, मुझसे जैसा बना मैंने तुम्हारा बचपन सवारा था, अब तुम मेरा बुढ़ापा सुधार रहे हो, हिसाब बराबर हो गया, गिले शिकवे की तो कोई बात ही नहीं है। बस मैं यही चाहती हूं कि जो भी करो गरिमापूर्ण ढंग से करो। उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर मुझे सुख शांति और सम्मान से जीने दो। यह छद्म परिचय लेकर तो मैं कभी भी सिर उठाकर नहीं जी सकूंगी। क्या तुम्हें यह अच्छा लगेगा? बात करते करते वे अचानक रुक गईं। वीरेश के बालों को सहलाती उनकी उंगलियां भी थम गईं। अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए उन्होंने कहा, सच बताना मुन्ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन संभ्रांत लोगों के बीच मेरा असली परिचय देते हुए तुम्हें संकोच हो रहा है? अगर ऐसा है तो किसी तरह की दुविधा मत पालो। मुझे किसी ऐसे आश्रम में रख दो जहां तुम्हारी आया कहलाने में ना मुझे संकोच होगा ना तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। कैसी बातें कर रही हो जिया? वीरेश आवेश में एकदम उठकर खड़ा हो गया था। कसम ले लो जो आज तक मैंने कभी तुम्हें आया समझा हो। उसका स्वर एकदम तरल हुआ है। अपनी जन्मदायिनी माँ को तो मैंने बस तस्वीर में ही देखा है, उनकी कोई याद मेरे मन में नहीं है। पर सच कहता हूं, बाहर रहते हुए जब भी घर की याद आई है, माँ के रूप में तुम्हारी छवि मन में उभरी है। मुझे दुख है तो इसी बात का कि इस रिश्ते को कोई वैधानिक दर्जा नहीं मिल सका, नहीं तो मैं वृद्धाश्रमों की खाक क्यों छानता, तुम्हें साधिकार ससम्मान सीधे अपने घर ले जाता। यह तुम्हारा वहम है बेटे, इसे अपने मन से निकाल दो। वैधानिकता रिश्तों की गारंटी नहीं देती, नहीं तो तुम्हारे उस 5 सितारा वृद्धाश्रम में इतने लोग आकर क्यों बसते? अवाक रह गया वीरेश, समझ गया कि जिया ने उसे आर पार देख लिया है। वह शब्दों का जुगाड़ कर ही रहा था कि जिया ने कहा, खैर उन लोगों की बात रहने दो, वो उनका जीवन है, जैसा चाहे जिए। तुम अपनी कहो, क्या मेरे वहां रहने से तुम्हें खुशी होगी, तसल्ली मिलेगी? तो यही सही। मैं नहीं चाहती कि मुझे लेकर तुम्हारे मन में कोई अपराध बोध रहे। बस यह फॉर्म जरूर दूसरा ले आना। कहते हुए जिया ने मेज पर पड़ा वह फॉर्म उठा लिया। उन्होंने उसे जिस बेतरतीबी से अपनी मुट्ठी में भींच लिया था, उससे साफ जाहिर था कि वह कमरे में जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगी। जला भी दे तो कोई आश्चर्य नहीं, पर वीरू के सामने इतनी सी आक्रामकता भी उन्हें मंजूर नहीं है। उन क्षणांश में जिया वीरेश के लिए माँ से भी बढ़कर हो गई थी। माँ कभी इतनी निरपेक्ष नहीं होती, कभी ना कभी अपने दूध का कर्ज मांग ही लेती है। गाथा में अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी अनिकेत का दूसरा और अंतिम भाग। इसे प्रस्तुत कर रही थी आरती श्रीवास्तव।